संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे ये असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। पहले कहे वे सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार माने श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। व्याख्या, उदारा सर्वे वैते, ये सब के सब भक्त उदार है, श्रेष्ठ भाव है। भगवान ने यह जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव है। जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूं। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े, भक्त इस बात की परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वो उदार है। दूसरा, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वो चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वो चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उनकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते। कारण कि भगवान परम पिता है, परम हितेशी है। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वो भक्त भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते, यह उन भक्तों की उदारता है। तीसरा, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यह उनकी उदारता ही तो है। चौथा, भगवान के दरबार में मांगने वाले को भी उदार कहा जाता है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, विनय पत्रिका। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। ये भगवान की कितनी उदारता है। पांचवा, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचन मात्र भी भाव नहीं आता, वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का ये अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, या तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार ही है, पर ज्ञानी को उदार क्या कहे, वो तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं, उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव करता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है, एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता, वह दोनों ही प्रेमास्पद है और दोनों ही प्रेमी है। यही ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम तात्पर्य है। आस्तित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम गति कोई नहीं होती ऐसे सर्वोपरि मुझमें ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मुझमें उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचन मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मुझसे अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। कौन ज्ञानी भक्त। परिशिष्ट भाव, सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वो उदार नहीं होता है, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त हो जाता है उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यह उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भक्त संसार को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं। उदारा सर्वे वैते, एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी आर्थ और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, गतागतं काम कामा लभन्ते। परंतु जो भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी, अर्थ और जिज्ञासु तीनों को ही भगवान ने यह उदार कहा, परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेधा कहा है। इसी अध्याय का 23वां श्लोक। और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताया है। 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण, अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य यह है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध हुआ ही नहीं। तत्वज्ञानी की ब्रह्म से तात्विक एकता है, अतः सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत चित आनंद स्वरूप है, ऐसे वह जीव भी सत चित आनंद स्वरूप हो जाता है और तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं, उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता है, और वह ज्यों ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रहती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता माने अहंता कम होती जाती है, और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए त्वात्मैव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत है, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। बोधसार भक्ति प्रसंग 42वां सूत्र। यह ऐसा भी माना जा सकता है कि भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। मामे वानुत्तमां गतिम। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यह गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। आस्थित है, एक दृढ़ता अभ्यास से होती है, एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है।